खुश नसीब हूँ बाबा मुझको तेरा प्यार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा मुझको
ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। आज का विषय बहुत सुंदर भी है और जीवन के लिए उपयोगी भी है, खुशनुमा जीवन। खुशनुमा जीवन सर्वश्रेष्ठ है, सर्वप्रिय है और हम सबकी यही शुभ इच्छा रहती है कि हम भी खुश रहें और हमारे से दूसरों को भी खुशियां मिले। इस खुशनुमा जीवन को परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, या यू कहे बाप दादा ने, हम सबको खुशनुमा जीवन जीने के लिए बहुत कुछ श्रेष्ठ सत्य और ऊंची ऊंची स्मृतियां हम सबके अंदर जागृत की है। प्राण बाप दादा की यही शुभ इच्छा रहती है कि मेरे बच्चे खुद भी मुस्कुराते रहें और समस्त विश्व को अपनी आंतरिक मुस्कुराहट से चेंज करते रहें। प्राण बाप दादा का एक ही शुभ संकल्प है कि मेरे बच्चे समस्त विश्व के कोने कोने में जाकर खुशनुमा जीवन कैसे जिया जा सकता है उसका संदेश दे। उसके लिए प्राण बाप दादा अनेक अनेक प्रकार से हम बच्चों को शिक्षाओं के द्वारा, अपनी पालना के द्वारा, अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा, अपनी सूक्ष्म साकाश के द्वारा सींचते रहते हैं और खुशनुमा फूल की तरह कैसे मेरे बच्चे खिले रहे उसी की बीज बोते रहते हैं। कहा भी जाता है कि अगर आप श्रेष्ठ और खुशनुमा जीवन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आत्मसमृति उसकी कुंजी है। आत्मसमृति से प्राप्त पवित्रता उसकी पूंजी है, पवित्रता से प्राप्त प्रसन्नता उसका ऐश्वर्य है और इन तीनों की हम सबको बहुत जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। अब ये तीनों चीजें आत्मसमृद्धि, पवित्रता और प्रसन्नता, ये तीनों हमारे पास कैसे रहे और हम अपनी आंतरिक शक्तियों को कैसे जागृत करें उसके लिए बाबा ने हमें बहुत कुछ, हम सबका श्रृंगार किया है, हम सबको सींचा है। अब हम आते हैं कि ये खुशनुमा जीवन इसके लिए हमें जरूरी जरूरी बातें कौन सी ध्यान में रखने की है, कौन से ऐसे केंद्र बिंदु है जिससे हम खुशनुमा जीवन सदा काल के लिए जी सकते हैं और दूसरों को तजो ताजा रखने के लिए साधन दे सकते हैं अपने जीवन के द्वारा। खुशनुमा जीवन उसी का रह सकता है जिसके अंदर प्रेम हो, मधुरता हो, धैर्यता हो और उपराम वृत्तियां हो। क्योंकि जब तक हमारी वृत्तियां आसक्त है, उपराम नहीं है और हमारे जीवन के अंदर सच्चे प्रेम की लो जागृत नहीं है और उसके साथ साथ दिव्य गुणों की धारणा नहीं है, तो हम न खुद खुश रह सकते हैं न दूसरों को खुश रहा सकते हैं। तो उसके लिए प्राण बाबा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ और महान बनाने के लिए हमारे सामने चार सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा का रखा है और हम सबका ध्यान इसी एक बात की तरफ लगाया कि बच्चे तुम अगर सदा खुश रहना चाहते हो तो ज्ञान का मनन चिंतन करो। क्योंकि बिना ज्ञान के मनन चिंतन के, बिना योग तपस्या के और बिना सद्गुणों की धारणा के और बिना सेवा किए हम सदा हरे भरे रहे, हम सदा खुशहाल रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर हम चाहते हैं हम सदा खुशनुमा रहे तो उसके लिए बाबा ने हमारे चिंतन की धारा को भी बदल दिया। क्योंकि पहले हम सब बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते थे और हमारी वृत्तियां बाहर मुखी थी, तो बाहर मुखी वृत्तियां होने के कारण हम बाहर के संसार को ही देखते और बाहर के संसार के प्राणियों में ही विचरण करते और बाहर की बातों को ही यथार्थ समझकर अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते। परंतु अब परमात्मा बाप दादा हम बच्चों को यही कहते हैं, बच्चे बाहर मुखी से तुम अंतर्मुखी बनो और जितना जितना तुम अंतर्मुखी बनते जाएंगे, स्वचिंतन, समर्थ चिंतन, सकारात्मक चिंतन, शुभ चिंतन की धारा, पवित्र गंगा की धारा को अपने अंदर प्रवाहित करते जाएंगे, उतना तुम खुश, खुद भी खुश रहोगे, खुद भी सफल जीवन जी सकते हो, दूसरों को भी सफलता प्रदान कर सकते हो। क्योंकि जहां सफलता होती है वहां खुशी को बुलाया नहीं जाता, खुशी अपने आप आती है। खुशी के लिए हमें कोई त्याग तप करने की जरूरत नहीं है, खुशी के लिए हमें सफल बनने की जरूरत है, खुशी के लिए हमें खजाना इकट्ठा करने की जरूरत है। और कहते भी है कि खुशी तुम्हारा सबसे अमूल्य खजाना है। इस खजाने को श्रेष्ठ समृत्तियों के द्वारा, श्रेष्ठ विचारधारा के द्वारा, श्रेष्ठ दृष्टिकोण के द्वारा, श्रेष्ठ सोच के द्वारा संभाल के रखना, संभाल के रखना। वैसे भी आप देखेंगे खुश रहने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ और केंद्र बिंदुओं का ध्यान देना होगा। कई बार जब हम ज्ञान के अंदर आते हैं तो हम ज्ञान को गहराई से ना समझने के कारण ओवर नशे में भी आ जाते हैं, ओवर एक्शन में भी आ जाते हैं और ओवर कर्म भी करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब असली नेत्र खुलता है तो तो उस समय व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। पर बाबा ने जो हम बच्चों को ज्ञान नेत्र दिया है, उसको जीवन की प्रयोगशाला में बैठकर उसका इस्तेमाल करें और उसको खुला रखकर चलेंगे, तो फिर क्या होगा कि हमारे को श्रेष्ठ और महान जीवन जीना और व्यवहार कुशल होना अपने आप आएगा। जहां व्यवहार कुशलता है वहां खुशियां अपने आप आती है। जहां पुण्य है, जहां श्रेष्ठ कर्म है, जहां श्रेष्ठ समृद्धियां है, वहां जहां संपन्नता है, क्योंकि सबसे बड़ी संपन्नता हमें अपने जीवन के अंदर दिव्य गुणों की लाना है। क्योंकि कहते हैं जहां सद्गुण का वास है, जहां दैवी स्वभाव है, वहां प्रकृति भी दासी बन जाती है। तो हम सब अगर चाहते हैं हमारी प्रकृति, हमारा नेचर हमारे अनुकूल बन जाए, तो उसके लिए हमें सद्गुणी बनना परम आवश्यक है। और सद्गुणी बनने के साथ साथ सफल जीवन जीने के लिए संतुलन का होना परम आवश्यक है। क्योंकि जहां संतुलन है, बैलेंस है, वहां आगे चलकर सर्व प्राप्तियां अपने आप में प्राप्त होती हैं। जैसे आप देखेंगे बैलेंस का मतलब, कई लोग बैलेंस का मतलब ये समझते हैं कि बराबर बराबर, परंतु प्राण बाप दादा ने हम बच्चों को बैलेंस का बहुत अच्छा तरीका बताया। बैलेंस का मतलब अर्थ बराबर बराबर नहीं है। बैलेंस का अर्थ है जितना उचित है, जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है, उसके अनुकूल उसका प्रयोग किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अच्छा भोजन करना चाहते हैं, तो भोजन को बनाने वाले का हमेशा ये ध्यान रहता है कि जो चीज मेरे पास है, जिसको मैं बनाने जा रहा हूं या जा रही हूं, उसी अनुपात से ही मैं उसके अंदर मसाला डालू, तेल डालू, पानी डालू, उसी तरीके से ऐसा बनाऊ जो वो चीज अच्छी बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप खिचड़ी बनाना चाहते हैं, तो खिचड़ी बनाने के टाइम आप हमेशा ये सोचते हैं कि अगर एक किलो चावल है तो एक किलो ही दाल नहीं डालेंगे, उसमें उतनी ही सब्जियां नहीं डालेंगे, उतना ही नमक नहीं डालेंगे, उतना ही पानी नहीं डालेंगे, परंतु जिस अनुपात से उसके अंदर चावल के साथ साथ दाल, सब्जी, चीनी, घी, पानी, जो भी चाहिए होता है वो डालेंगे और फिर उसको अच्छी तरह से पकाएंगे, फिर आपको वो खाने में स्वादिष्ट लगेगी। ऐसे ही जीवन रूपी वीणा के द्वारा सुख शांति आनंद की झंकार निकले, तो वो तभी हो सकता है जब जीवन रूपी वीणा के तार मध्यम हो, ना बहुत ऊंच हो ना बहुत नीच हो। इस पर मुझे एक प्रसंग याद आता है। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक शिष्य आया और उन्होंने यही कहा कि महाराज, मैं परमात्म प्राप्ति करना चाहता हूं। तो उन्होंने उसको आत्मसात किया और जो तपस्या के तप के लिए जो विधि विधान था वो बताया। अब वो शिष्य को यही एक लगन लग गई कि मुझे जल्दी से परमात्मा के पास जाना, परमात्मा से मिलन मुलाकात करनी है और अपनी जल्दी से जीवन को तपा करके एक कुंदन की न्यायी बनना है। तो वो अपने शरीर की सारी सुध-बुध भूल करके तप 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 में लग गया और कुछ दिनों के बाद उसका शरीर जो था वो बिल्कुल सूख सा गया, क्योंकि ना वो खाना खाता, ना वो पानी पीता, ना वो कुछ और करता, सिर्फ तपस्या के अंदर ही वो लगा रहता था क्योंकि उसको एक धुन सी लग गई। तो एक दिन महात्मा बुद्ध उधर से निकल रहे थे, उनकी दृष्टि उस बच्चे उस व्यक्ति के उस शिष्य के पास गई तो उन्होंने देखा ये तो बहुत फलता फूलता शरीर वाला व्यक्ति था और आज ये इतना ऐसा क्यों हो गया। तो उन्होंने उसको बहुत प्यार से पुचकार से अपने पास बुलाया और उनको ये कहा कि उसका नाम था श्रोण। श्रोण वो पहले राजकुमार था। श्रोण जब तुम राजकुमार थे, राजकुमार तुम्हारे को वीणा चलाना वीणा बजाना बहुत अच्छा आता है, तो आज मैं तुम्हें एक काम देता हूं, ये लो वीणा, इसको जैसे तुम पहले इससे सुर निकालते थे वैसे सुर निकालो। तो उन्होंने क्या किया, वीणा को थोड़ा ढीला कर दिया। अब वो वीणा चलाए तो उसे चले नहीं और वो कहता बंदे मेरे से तो ये नहीं चल रही है। फिर उन्होंने उस वीणा को पकड़ कर उसके तार और टाइट कर दिए, फिर कहा अब तुम इससे सुर निकालो संगीत निकालो, तो कहता है बंदे ये नहीं निकलते हैं। फिर उन्होंने पकड़ करके उसको मध्य में जहां जितनी जरूरत थी वहां सेट करके उसको कहा अब तुम इसके अंदर से वो संगीत के सुर निकालिए। तो उसने वो निकाला और बहुत अच्छी तरह से उसने वो संगीत उस वीणा के द्वारा बजाया। तो फिर महात्मा बुद्ध उनको कहते हैं कि ऐसे ही जीवन भी एक वीणा है और अगर हम उसको उसके अनुकूल जितनी जरूरत है, हमें परमात्मा पिता तक जाना है, हमें उड़ती कला में जाना है, हमें चढ़ती कला में जाना है, हमें विकर्माजीत बनना है, हमें कर्मातीत बनना है, हमें कर्म बंधन से रहित बनना है।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बलकार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता
तो मैं ये बता रही थी कि इतनी उच्चतम स्थिति को प्राप्त करना है तो इस जीवन रूपी वीणा में के द्वारा कौन कौन सी विशेषताओं को अपने अंदर लाना है। सबसे जरूरी है हमारे जीवन के अंदर सच्ची प्रेम का होना, क्योंकि जहां सच्चा प्रेम है, दया है, करुणा है, वहां सब कुछ है। सच्चा प्रेम उस परमात्मा पिता के लिए अपने अंदर पैदा करना है और जब तक वो सच्चे प्रेम की लो ज्योति हमारे अंदर सदा जागृत नहीं रहेगी तो जो हमारी इच्छा है कि हम सदा खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं वो सच्चे प्रेम के आगे ना कोई भक्ति है, ना कोई शक्ति है, ना कोई यात्रा है। उसे इन चीजों की जरूरत नहीं है। जहां वो सच्चे प्रेम की लो जग जाती है वहां वैराग अपने आप पैदा हो जाता है, विरक्त भावनाएं अपने आप आ जाती है। उसके लिए वैराग लाना या विरक्त भावनाओं को या उपराम वृत्तियों को पैदा करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप हमने यज्ञ के इतिहास के अंदर देखा, जैसे जैसे बाबा ने उस सच्चे प्रेम की लो अर्थात सत्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान दिया, आत्म ज्योत जगाई, और उस आत्म ज्योत जैसे जैसे जिनकी जगती गई उनके अंदर ऑटोमेटिकली सर्वोपरि कर की प्राप्तियां अपने आप आती गई। और आज भी हम देखते हैं जिसके अंदर वो ज्योत जग रही है, जिसकी निश्चय की नींव मजबूत है, आत्मा निश्चय परमात्म निश्चय की नींव जिसकी मजबूत है, आत्मविश्वास और परमात्म विश्वास की नींव जिसकी मजबूत है, उसके अंदर संपन्नता सद्गुणों का वास अपने आप आता जाता है और खुशियां भी वहां ऑटोमेटिकली रहती है। और वैसे भी कहा जाता है खुश रहो, जितना तुम खुशी दूसरों को दोगे उतना खुशी तेरे को मिलेगी। तो हम खुशी किसको कैसे दे सकते, खुशी में क्या दे, उसके लिए मधुर बोल बोले और तोल करके बोले, जो बोलो सो तोल करके बोलो और मधुर वाणी बोलो, जिस मधुर वाणी के द्वारा या मधुर संकल्पों के द्वारा ही हम दूसरों को खुशियां दे सकते हैं। आप देखेंगे संसार के अंदर ये जो आज दूरियां बढ़ती जा रही हैं, उसका मेन कॉज अगर जाए गहराई में जाए तो हमारे संकल्पों का शुद्धिकरण नहीं है। एक दूसरे के प्रति हम अशुद्ध सोच संकल्प करते हैं, अंदर ही अंदर व्यर्थ संकल्प करते हैं, नेगेटिव संकल्प करते हैं, जिसके कारण दूसरे के पास वो वाइब्रेशन पहुंच जाता है और मुख से बोले बिना एक दूसरे से दूरियां बढ़ती जाती हैं और दुख और निराशा का अनुभव करने लगते हैं लोग। तो आज ये दुख और निराशा जो सामने सामने दिखाई देती है या डिप्रेशन सामने सामने दिखाई देता है वो ना हो, उसके लिए बाबा ने हमको एक और बहुत अच्छी तरकीब बताई कि बच्चे शुद्ध भोजन करो, तुम्हारा आहार विहार व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध भोजन से मेरा अभिप्राय सिर्फ स्थूल भोजन से नहीं, वो तो हम ब्राह्मणों के लिए बाबा ने क्या है एक ऐसा नियम ही बना दिया हुआ है जो हम लोगों को अपने यज्ञ में अपने उस परमात्म पिता की याद में बना हुआ भोजन ही स्वीकार करना है, जिससे ही हमारी मनोस्थिति ऊंची बन सकती है। परंतु मेरा इस समय शुद्ध आहार से अभिप्राय मानसिक सूक्ष्म आहार भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। आप कहेंगे इसका क्या प्रयोजन, तो शुद्ध आहार आप देखेंगे आंखों के द्वारा भी, कानों के द्वारा भी, मुख के द्वारा भी, स्पर्श के द्वारा भी हम अशुद्ध वाइब्रेशन को, व्यर्थ संकल्पों को, व्यर्थ की वृत्तियों को, व्यर्थ के वातावरण के प्रभाव को अपने अंदर ले जाते हैं और हमारा जो चिंतन होता है वो समर्थ चिंतन की बजाय व्यर्थ चिंतन चलता है और वो व्यर्थ चिंतन ही हमारी खुशियों को गायब करता है। और कहते भी है सकारात्मक चिंतन अमृत तुल्य है, व्यर्थ चिंतन किसके तुल्य है, विष के समान है। वो विष की तरह अंदर अंदर व्यर्थ चिंतन विष की तरह अंदर अंदर घुलते 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 मनुष्य के संस्कारों को बिगाड़ देता है और प्राण बाप दादा हम बच्चों को कि संस्कार कौन से संस्कार बनाना चाहते हैं, सत्व प्रधान संस्कार, क्योंकि हमारे सत्व प्रधान संस्कारों से ही संस्कृति बननी है। आने वाले संसार की जो संस्कृति होगी वो वर्तमान के संस्कारों से ही बननी है। तो वर्तमान में हमें अपने आप को पूछना चाहिए कि हमें अपने संस्कारों को शुद्ध और सत्व प्रधान बनाना है तो मेरा जीवन में संतुलन कहां तक है। ऐसा तो नहीं है मैं किसी के कहने से अपनी मानसिक अवस्था खराब कर लेती हूं और होश आवाश गुम हो जाते हैं और कुछ भी बोल देती हूं, ऐसा तो नहीं। क्योंकि आप देखेंगे संतुलन को बनाना, संतुलन को बिगाड़ना भी हमारे हाथ में है, परंतु हां उसके लिए श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जरूर चाहिए, पुण्य का खाता जरूर चाहिए। जिसके पास पुण्य का खाता है, जिसके पास श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी है, वो संतुलित भी रह सकता है और संतुलन दूसरों को भी दे सकता है। सफलता के लिए संतुलन एक आधार स्तंभ है। जैसे योगी जीवन के लिए चार आधार स्तंभ है, मन वचन कर्म की पवित्रता, शुद्ध अन्न, सत्संग और दैवी गुण। इसी प्रकार श्रेष्ठ और खुशनुमा जीवन जीने के लिए भी संतुलन एक आधार स्तंभ है। संतुलन एक दिन में नहीं आता है, खुशियां भी एक दिन में नहीं आती है, ये अभ्यास से ही आती है। जितना जितना हम इसका अभ्यास करते जाते हैं, अटेंशन और चेकिंग करते जाते हैं, उतना उतना और शुद्ध संकल्पों का भोजन करते रहते हैं, उतनी हमारी बुद्धि दिव्य बनती जाती है। और जहां बुद्धि दिव्य हो जाती है, बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाती है, वहां सर्व प्राप्तियां स्वतः ही बागी चली आती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बुद्धि निर्णय शक्ति भी दिव्य बन जाए, हमारे जीवन के अंदर सत्यता पवित्रता और दिव्यता आ जाए और हम सदा खुश रहें और लोगों को खुशियां बांटते रहें, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक अटेंशन रूपी विवेक रूपी चौकीदार को रखना होगा। क्योंकि जब विवेक रूपी चौकीदार अपने पास हम नहीं रखते हैं, पैरा अपने आप में नहीं रखते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जैसे चलते हैं, हमारे जीवन में कोई विशेषता नहीं आ सकती है। तो अगर हम अपने आप को एक विशेष बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं हम एक दिव्य मूर्ति बन जाए, तो वो दिव्य मूर्ति बन सकती है, इसमें कुछ दो राय नहीं। चार दिन पहले मुझे एक संकल्प आया कि बाबा हम बच्चों को कितना सत्व प्रधान बनाना चाहता है और बाबा यही चाहता है कि मेरे बच्चे इतने श्रेष्ठ, इतने महान, इतने पवित्र बन जाएं जिनकी नजर पड़ते ही व्यक्ति विशेष में परिवर्तन आ जाए। तो मैं ऐसे ही सवेरे 4 बजे योग में बैठी थी और ये विचार मेरा अपने आप के लिए चल रहा था, और उस समय मेरे सामने कबीर दास जी खड़े हो गए आकर के। तो मैंने कहा पता नहीं ये क्यों आए, फिर मेरे को एकदम टचिंग आई कि कहते कबीर दास जी के पास राम नाम की घुंडी थी और वो प्रसिद्ध हो गए थे कि वो राम नाम का जाप करके किसको भी पानी देते थे तो अमृत बन जाता था और उनके रोग दूर हो जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक माता का बच्चे को बहुत बुखार था, कई इलाज किए वो ठीक नहीं हो रहा था। तो उसने सुना कबीर दास जी के पास वो गुट्टी मिलती है, तो वो दूसरे शहर से भी उन कबीर दास जी के स्थान पर आई। तो कबीर दास जी उस समय वो घर पर नहीं थे, तो उनकी पत्नी पूछती आप कैसे आना हुआ, तो क्या वो कहने लगी कि कबीर दास जी के पास एक गुट्टी है, जैसे मैं अपने बच्चे को दिखाने आई हूँ और वो गुट्टी लेने के लिए आई हूँ। तो माता ने कहा कि वो तो बाहर गए हुए हैं, तो आप यहाँ तो बैठ जाइए, नहीं तो मैं ही आपको वो जल दे देती हूँ। तो क्या हुआ, उसने जल बनाया और उसने कहा राम 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 और जल दे दिया और वो लेकर के चली। तो क्या हुआ कि कबीर दास जी जब घर में आए तो पूछते हैं कि कोई आया था, तो उन्होंने कहा एक माता अपने बच्चे को लेके आई थी। तो कहा क्या हुआ, तो कहने लगी कि वो ऐसे ऐसे कह रही थी कि मैं गुट्टी लेने के लिए आई हूँ, कबीर दास जी के पास वो शक्ति है। तो फिर उन्होंने कहा तूने क्या किया, तो कहा मैंने कहा राम राम राम, ऐसा कह करके मैंने जल दे दिया। तो कबीर दास जी उसको बोलते हैं तुझे अपने राम के ऊपर निश्चय नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सबको अपने आप को बैठ करके झंकोरना है, देखना है कि आज हमारे को अपने पिता के ऊपर इतना निश्चय है, अपने अंदर हमने इतना सत्यतम, इतनी पवित्रता, इतनी दिव्यता, इतना त्याग और तप का बल लाया है, जो हमारी वाणी, जो बाबा कहते हैं तुम्हारी वाणी जहर का काम करे, तुम्हारी वाणी चेंज कर दे एक सेकंड के अंदर। जो आज हम अपनी दादियों को देखते, तो ये बैठ बैठ करके अभी जो हम लोगों के पास काम है, क्या करने का है, अभी यही कुछ करना है कि जैसे उनको, हालांकि हम उनको भक्त कहते हैं और अपने जीवन को उनसे श्रेष्ठ मानते हैं, तो वो श्रेष्ठता, वो दिव्यता, वो शक्ति, वो जलवंत ताकत, पवित्रता की, रूहानियत की हमारे अंदर कहां तक आई है, जो हम बोले वो हो जाए। उसके लिए हमें अपने आप को बैठ करके खोजना है अच्छी तरह से, और जितना खोजते जाएंगे, जितना संतुलित बैलेंस माइंड होकर के चलते जाएंगे, उतना हमारे जीवन में एकाग्रता आती जाएगी, और जहां एकाग्रता का वास है वहां सर्व प्राप्तियां अपने आप आती है। इसलिए गीता के अंदर भी खास कहा गया एकाग्र चित्त भव, एकाग्र वृत्ति भव, एकाग्रता ही उसकी विशेषता गाई हुई है, महिमा गाई हुई है। तो हम लोगों को भी अभी अपने जीवन में इन जो हमारी निजी संपदा है उनको उजागर करना है, और इन शक्तियों को अपने जीवन के अंदर धारण करना है, और जितनी जितनी ये शक्तियां आती जाएगी, जितनी जितनी हमारी वृत्तियां अनासक्त होती जाएगी, जितना जितना हम कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे, उतना उतना जो बाबा का बच्चों के प्रति संकल्प है, ये मेरे बच्चे अब विकर्मा चीत बन करके कर्मा तीत अवस्था को धारण करते हुए वापस अपने संपूर्ण और संपन्न बनते हुए फरिश्ता स्वरूप धारण करते हुए वापस घर जाना है, यही सच्चा खुशनुमा जीवन है। अब ऐसे जीवन को बनाने के लिए हमको अपनी दिनचर्या के ऊपर भी ध्यान देना होगा, अपने मनन चिंतन के ऊपर भी ध्यान देना होगा, और अपने इन दरवाजों को भी बंद करके रखना होगा कि कोई चोर दरवाजे से भी माया प्रवेश न कर जाए, क्योंकि माया भी कम नहीं, वो चोर दरवाजे से भी प्रवेश करके हमारी खुशियों को गायब करने की कोशिश करती है। वास्तव में वो चोर दरवाजे भी हमारी मानसिक कमजोरियां ही है, और कोई चोर दरवाजे नहीं है। तो जितना अपनी मानसिक कमजोरियों को पर हम अटेंशन देंगे, जितना हमारा ज्ञान चिंतन होगा, जितना स्वाध्याय होगा, जितना हमारा अपने आप में मनन चिंतन होगा, उस प्रभु पिता के साथ रू रूहान होगी, वार्तालाप होगी। जैसे आप देखेंगे जानकी दादी को जब हम देखते हैं तो कैसे लगता है कि एक संतनी को हम इधर से उधर कैसे एक झूले के अंदर ले जा रहे हैं ना, वो निश्चिंत होकर के है ना, अनासक्त होकर के वो संतरी देवी बैठी है और संपन्न स्थिति के अंदर स्थित है। तो दादी ने भी तो कोई विशेष ऐसा पुरुषार्थ किया और बाबा को अपना संगी और सारथी बनाया और बाबा जो कहे उनके अनुकूल अपने आप को चलाया, तभी तो इतनी महान स्थिति उनकी प्राप्त हुई। आज अपनी गुलजार दादी को देखो, अपनी बड़ी दादियां बड़े भाई बहनों को देखो, तो वो आंतरिक पुरुषार्थ कर रहे हैं और फिर जब तक आंतरिक सच्चे प्रेम की लो हमारे अंदर नहीं जागृत हुई, तब तक हम जो संकल्प लेकर के सफेद वस्त्रधारी बने हैं तब तक मन से सफेद नहीं हो सकते। इसीलिए कहा गया योगाष्टग्नि दग्धो विकर्मा, योग की अग्नि सदा जलती रहे और हम रोज उसके अंदर हवन करते रहे, कुछ ना कुछ उस हवन के अंदर उस यज्ञ के अंदर डालते रहे। एक दिन ऐसा आएगा जो जो कुछ भी हमारे पास बुराइयां हैं वो खत्म होती जाएगी, उसकी जगह पर एकदम जीवन के अंदर जो असली संपदा है सत्यता प्रेम दया करुणा वो हमारे जीवन के अंदर आती जाएगी, जो ही हम सबका असली संपदा है। उस असली संपदा को हमें कायम रखना है और विकर्मों से भूलों से चोरों से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि यही चोर यही क्रोध आवेश निंदा चुगली मान अपमान अनुमान आलस्य ये सारे हमारी मनोस्थिति को थोड़ा कमजोर करते हैं। तो इनको अपने से थोड़ा दूर रखते हुए अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखना है और अपने आप में ऊंची समृद्धियां जागृत करनी है कि भगवान ने मुझको नाम दिया है, तू इष्ट है, तू देव है, तू पूज्य है, तू महान आत्मा है, तू लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा है, तू शिव की शक्ति है। तो उन्हीं स्मृतियों को के अंदर जितना जितना हम विचरण करते जाएंगे उतना उतना हमारी मनस्थिति अपने आप में उज्ज्वल बनती जाएगी, उतना उतना हमारा भाग्य का सितारा अपने आप में चमकता जाएगा। परंतु बिना भाग्य के भी कई ऐसे भी लोग हैं बेचारे बहुत पुरुषार्थ करते हैं परंतु उनके भाग्य में अगर खुशी नहीं होती तो ऐसा कोई ना कोई कारण बन जाता है। पर मेरे ख्याल में मैं इस बात को नहीं मानती हूं, मैं कहती हूं पुरुषार्थ फर्स्ट और विधिवत जो भी विधि और विधान है उनके अनुसार किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, हमेशा वो फल देता है। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत विधि विधान सिखा दिया है और अब हम बारी है हम अपने आप को एक सशक्त और शिव शक्ति के रूप में स्थित करने वाली वो फोटो जो मम्मा के साथ अनेक शक्तियां खड़ी है, वो जो फोटो आपने यहाँ पर नहीं दिखाई देता है वो फोटो जब हमने शुरू में देखा एक माला के रूप में मम्मा के साथ अनेक शिव शक्तियां खड़ी है और वो फोटो अगर हम अपने सामने सदा रखें कि मैं वही इसी के अंदर मैं वही शिव की शक्ति हूँ जो विश्व को नया मोर नई दिशा देने वाली हूँ, तभी मानेंगे जीवन की सच्ची सार्थकता है। तो सार्थक जीवन बनाइए और अपने जीवन से खुशियां बांटो। मुझे जानकी दादी का एक शब्द बहुत याद रहता है, कुछ चला जाए, धन चला जाए, संपत्ति चली जाए, कुछ भी चला जाए, पर मेरी खुशी किसी कारण से भी न जाए, मैं सदा खुशी के झूले में झूलती रहूं, है ना। तो अभी प्रयास हम सबको इसी बात का करना है कि मैं सदा खुश रहूं औरों को खुशियां बांटती रहूं, बांटती रही, मेरे वाइब्रेशन मेरे सद्भाव मेरी सद्भावनाएं मेरा ओरा सबको खुशी प्रदान करता रहे और सच्ची राह दिखाता रहे, उनके जीवन को भी सार्थक बनाता रहे, तभी सदा खुश रह सकते हैं। वरना तो कभी खुश कभी गम में आते रहेंगे जाते रहेंगे। परंतु मैं सदा खुश रहूं, मुझे अपने को इस बात का अटेंशन सदा रखना है। ओम शांति शांति शांति।
खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी।